पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर एक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं नमियूणनन्तजिणं अनन्तनाणेन बिट्टसौवर्थम् कम्मपदेश विहत्तिं पोच्छामि जहागमं वयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इस ग्रंथम की रचना की है। सातवीं पुस्तक वही प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार भी चलेगा अपना। पहले हम विषय परिचय को देखते हैं और उससे हम आगे बढ़ेंगे। यहीं से शुरुआत करते हैं विषय परिचय से। इसको भी पंचम अधिकार कहा, क्योंकि प्रदेश विभक्ति का अधिकार है ना। छह नंबर का हाँ मिला विषय परिचय। पूर्व में प्रकृति विभक्ति, प्रकृति विभक्ति यानी अन्य अन्य प्रकृतियां, स्थिति विभक्ति यानी निषेकों की बात देखी थी, कितनी स्थिति वाले निषेक हैं अलग अलग, अनुभाग विभक्ति का विचार कर आए हैं। प्रकृत में प्रदेश विभक्ति का विचार करना है, इन्हें छठवीं पुस्तक में हम शुरू किया था, इस पुस्तक में भी वही चलेगा। कर्मों का बंद होने पर ये छठी, पहले छठवीं पुस्तक और सातवीं का इकट्ठा है ये विषय परिचय। कर्मों का बंद होने पर तत्काल बंद को प्राप्त होने वाले ज्ञानावरणादि आठ या सात कर्मों को जो द्रव्य मिलता है उसकी प्रदेश संज्ञा है। बंद होते ही आठ में जो विभाजन होता है उसमें नंबर ऑफ परमाणु जो है उसको कहेंगे प्रदेश। यह दो प्रकार का है, एकमात्र बंद के समय प्राप्त होने वाला द्रव्य और दूसरा बंद होकर सत्ता में स्थित द्रव्य। दूसरा के बाद कॉमा लगाना, नहीं तो दूसरा बंद ऐसा हो जाएगा। केवल बंद के समय प्राप्त होने वाले द्रव्य का विचार महाबंध में किया है। यहां वर्तमान बंद के साथ सत्ता में स्थित जितना द्रव्य होता है उस सब का विचार किया गया है, यानी अकेले बंद के समय की बात नहीं है। हमने देखा ना, जहां कहीं भी उसकी जितनी है उसको वहां बताया जाता है। उसमें भी ज्ञानावरणादि सब कर्मों की अपेक्षा विचार न कर यहाँ पर मात्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा विचार किया गया है, क्योंकि जयधवला में मोहनीय की ही बात है। सब जगह प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति, अनुभाग विभक्ति में मोहनीय की बात उठाई। मोहनीय कर्म के कुल भेद 28 है। सर्वप्रथम इन भेदों का आश्रय लिए बिना और बाद में इन भेदों का आश्रय लेकर, भेदों का आश्रय लिए बिना मूल प्रकृति, भेदों का आश्रय लेकर उत्तर प्रकृति। प्रस्तुत अधिकार में विविध अनुयोग द्वारों के आश्रय से प्रदेश विभक्ति का सांगोपांग विचार किया गया है। सांगोपांगे ने डिटेल में विस्तार से, यहाँ पर जिन अनुयोग द्वारों के आश्रय से विचार किया गया है वे अनुयोग द्वार ये हैं: भागा भाग, सर्व प्रदेश विभक्ति, नो सर्व प्रदेश विभक्ति, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति। ये सब अपना हुआ है छठवीं पुस्तक में, इसलिए केवल पढ़ रहे हैं हम। जघन्य प्रदेश विभक्ति, अजघन्य प्रदेश विभक्ति, सादी प्रदेश विभक्ति, अनादि प्रदेश विभक्ति, ध्रुव प्रदेश विभक्ति, अध्रुव प्रदेश विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, यहाँ तो हमने देखा, यहाँ तक छठवीं पुस्तक का विषय है। फिर काल, अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबहुत्व। मात्र उत्तर प्रदेश विभक्ति का विचार करते समय सन्निकर्ष नामक एक अनियोग द्वार और अधिक हो जाता है, कारण स्पष्ट है। सन्निकर्ष का अर्थ है एक का उत्कृष्ट होते हुए दूसरे का उस समय क्या पोजीशन है, आपस में उसके क्या सन्निकर्ष नहीं संबंध, उसका निकटता। भागा भाग इस अनियोग द्वार में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन चार पदों का आश्रय कर एक बार जीवों की अपेक्षा और दूसरी बार सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं की अपेक्षा कौन कितने भाग प्रमाण है, इसका विचार किया गया है। यानी उत्कृष्ट वाले जीव कितने हैं वो जीव की अपेक्षा कहेंगे, और उत्कृष्ट में परमाणु कितने हैं परमाणु की अपेक्षा उत्कृष्ट उसको भी कहेंगे। तो इसको कहेंगे जीव भागा भाग और प्रदेश भागा भाग। जीव भागा भाग का विचार करते हुए बतलाया है उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है, और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के अनंत बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार देखो एट ए टाइम चार विभाग नहीं हो गए, सभी जो है उसके उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट दो ही, उसी को दूसरी तरह से बताना है तो जघन्य अजघन्य, यानी जो उत्कृष्ट वाले उसको भी अजघन्य में डालेंगे और जो जघन्य उसको भी अनुत्कृष्ट में डालेंगे। एक ही समय में चार भाई भेद नहीं करना, या उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट या जघन्य अजघन्य। इसी प्रकार जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले और अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के विषय में जानना चाहिए, यह ओघ प्ररूपणा है। आदेश से सब मार्गणाओं में अपनी अपनी संख्या को जानकर यह भागा भाग समझ लेना चाहिए। यानी जहाँ असंख्यात है तो असंख्यात वा भाग, असंख्यात बहुभाग। जहाँ अनंत घटित होते अनंत वा भाग, अनंत बहुभाग। प्रदेश भागा भाग का विचार करते हुए सर्वप्रथम तो सामान्य से मोहिनी कर्म की अपेक्षा प्रदेश भागा भाग का निषेध किया है, क्योंकि अवांतर भेदों की विवक्षा किए बिना मोहिनी कर्म एक है, इसलिए उसमें भागा भाग घटित नहीं होता। और फिर उन्होंने मोहिनी एक है ना, तो पूरे जो समय प्रबद्ध है उसका जितना भाग मोहिनी में आया उसका आया, उसको भागा भाग कैसे कहेंगे। तो फिर उसको समझाने के लिए आठों कर्मों में जो भागा भाग होता है, एक समय प्रबद्ध में कितना द्रव्य मोहिनी के खाते में आता है और कितना अन्य, उसकी अपेक्षा लेकर यहाँ बताया। अकेले मोहिनी में क्या एक जितना है उतना है, उसमें भागा भाग कैसे हो सकता है, इसलिए उसमें भागा भाग घटित नहीं होता। इसके बाद ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की अपेक्षा सामान्य से मोहिनी कर्मों को कितना द्रव्य मिलता है, इसका विचार करते हुए बतलाया गया आठ कर्मों का जो समुच्चय रूप द्रव्य है, यानी पूरा समय प्रबद्ध, उसमें आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे सब द्रव्यों में से अलग करके बचे हुए शेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य के आठ पुंज करके आठों कर्मों में अलग अलग विभक्त कर दे। आवली का असंख्यात भाग का भाग देना, एक भाग अलग रखना, जो बचा है उसके आठ समान भाग करना, फिर जो एक भाग था ना
उसका,
फिर उसका आवली का ये बार बार उसी प्रतिभाग से भाग देना, अवली के असंख्यात भाग से। अब बहुभाग बहुभाग कैसे देना उसको भी बताएंगे। उसके बाद जो एक बार बचा है उसमें पुनः अवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग करके शेष बहुभाग प्रमाण द्रव्य वेदनीय को दो दे। यानी सबसे पहला मान वेदनीय को, पुनः बचे हुए एक भाग में अवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो बहुभाग प्रमाण द्रव्य शेष रहे उसे मोहिनी को दे दे। लब्ध द्रव्य में पुनः अवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर जो बहुभाग रहे वह समान रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन तीन कर्मों में बांट दे। लब्ध द्रव्य में पुनः अवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण बचे हुए द्रव्य को नाम और गोत्र इन दो कर्मों में बांट दे। बांट देने, जो बचा हुआ भी हम बांट रहे हैं ना, वो पहले समान भाग में उसको मिलाते रहना, क्योंकि पहले आठ तो हमने एक भाग निकाल कर आठ तो समान किए थे, अभी जो पुनः उसको बांट रहे हैं उसके खाते में, वो पहले समान भाग में इन एडिशन इसको दे देना। तथा अंत में लब्ध रूप में जो एक भाग बचता है वह आयु कर्म को दे दे। इस प्रकार विभाग करने पर मोहिनी कर्म को प्राप्त हुआ द्रव्य आ जाता है, द्रव्य किया है, द्रव्य आ जाता है। मोहिनी कर्म को प्राप्त हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट और जघन्य के भेद से दो प्रकार का होकर भी सब कर्मों की अपेक्षा पूर्व में जो विभाग का क्रम बतलाया है उसमें कोई बाधा नहीं आती। क्या कहते हैं, यदि समय प्रबद्ध ही छोटा होगा तो उस अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में, अनुपात यानी प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन में उसका बंटवारा होगा। ख्याल में तीन बार तो मोहिनी के खाते में जघन्य या उत्कृष्ट तक कुछ भी वेरिएशन हो सकती है, परंतु उसका जो हिस्सा उसके खाते में आता है वो इसी प्रोपोर्शन में आएगा। इस प्रकार ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों को जो द्रव्य मिलता है उसका अलग अलग विचार करने पर आयु कर्म को सबसे स्तोक द्रव्य मिलता है। स्तोक यानी अल्प। नाम और गोत्र कर्म का द्रव्य परस्पर में समान होकर भी आयु कर्म के द्रव्य से विशेष अधिक होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म को मिलने वाला द्रव्य परस्पर में समान होकर भी नाम और गोत्र कर्म को मिले हुए द्रव्य से विशेष अधिक होता है। इससे मोहिनी कर्म का द्रव्य विशेष अधिक होता है और मोहिनी के द्रव्य से वेदिनी कर्म का द्रव्य विशेष अधिक होता है। यह ओघ प्ररूपणा है। सब मार्गणाओं में इसे इसी प्रकार यथा योग्य घटित कर लेना चाहिए। उत्तर प्रकृतियों में मोहिनी कर्म के सब द्रव्य का विभाग करते हुए, अभी मोहिनी के खाते में जितना आया है वो उत्तर प्रकृतियों में कैसा बंटवारा होता है उसको देखना है। एक बात समझ लेना, जितना सर्वघाती और देशघाती, अभी परमाणु में भी सर्वघाती देशघाती है जो जिसके स्पर्धक है, तो सर्वघाती का तो अनंत भाग होता है और देशघाती में अनंत बहुभाग मिलता है। तो जो जो सर्वघाती ही है उसमें तो अनंतवा ही भाग चले जाएगा, परंतु देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक भी है, देशघाती स्पर्धक भी है, या हम कहेंगे सर्वघाती परमाणु भी है, देशघाती परमाणु भी है, तो उसमें भी वो अनंत बहुभाग में वो सर्वघाती में चला जाएगा। प्रदेशों का बंटवारा भी उसी अनुपात से होगा। उसमें दोनों प्रकार के परमाणु हैं, देशघाती प्रकृति, हमने पहले सीखा था ना, सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती है, देशघाती प्रकृति के सर्वघाती भी और देशघाती भी है। तो जितना मोहिनी में सर्वघाती प्रकार के परमाणु स्पर्धक है उसमें अनंत वा भाग ही चला जाएगा और अनंत बहुभाग है वो देशघाती को मिलेगा। अब यहाँ क्या लिखते देखेंगे, उत्तर प्रकृतियों में मोहिनी कर्म के सब द्रव्य का विभाग करते हुए पहले उसमें अनंत का भाग दिलाकर एक भाग सर्वघाती द्रव्य, द्रव्य कहा ना, सर्वघाती प्रकृति नहीं कहा, द्रव्य कहा, तो देशघाती प्रकृतियों में भी जितना सर्वघाती द्रव्य है उसमें भी इसमें से ही चला जाएगा, यानी अनंत वा भाग है उसमें मिथ्यात्व तो 12 कषाय को तो जाएगा ही जाएगा, परंतु संज्वलन के भी सर्वघाती जो परमाणु है उसमें भी चला जाएगा और शेष बहुभाग देशघाती द्रव्य बतलाया गया है। देशघाती द्रव्य में भी कषाय और नौकषाय रूप से उसे बांटा गया है। देशघाती जितना मिला है उसमें भी कषाय नौकषाय में चला जाएगा। बाद में प्रत्येक का अपने अपने अवांतर भेदों में बंटवारा किया गया है। अपना अपना अवांतर भेद का अर्थ क्या है, जैसे अनंतानुबंधी में जितना मिला है या चारित्र मोहिनी का जो है, कषायों का अपना अपना अनंतानुबंधी अप्रत्याखान प्रत्याखान संज्वलन इस तरह से, उसमें भी क्रोध मान माया लोग
हाँ,
वो सर्वघाती का उदय चल रहा है, परंतु वहाँ द्रव्य सर्वघाती का द्रव्य है तो अनंत वा भाग, अनंत का भाग होकर भी इतनी शक्ति है कि वो प्रतिपक्ष का पूरा घात करे। इसी प्रकार सर्वघाती द्रव्य को भी सर्वघाती प्रकृतियों में विभक्त करके बताया गया है। सर्व हुआ सर्वघाती। इस विषय की विशेष जानकारी के लिए मूल में देख लेना चाहिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। गति आदि मार्गणाओं में विचार करते समय नरक गति में जो विशेषता है उसका अलग से निर्देश करके अन्यत्र भी जान लेने की सूचना की गई है। इस प्रसंग से गति संबंधी जिन मार्गणाओं में नरक गति से कुछ विशेषता है उसका निर्देश करके उत्कृष्ट भागाभाग प्ररूपणा को समाप्त किया गया। भागाभाग यानी कैसा बंटवारा होता है उसी को यहाँ भागाभाग में लिया। जघन्य भागाभाग का भी इसी प्रकार स्वतंत्रता से विचार करते हुए ओघ और आदेश से उसका अलग अलग स्पष्टीकरण किया गया है। आदेश प्ररूपणा की अपेक्षा मात्र नरक गति में विशेष विचार करके गति मार्गणा के जिन अवांतर भेदों में नरक गति के समान जघन्य भागाभाग संभव है उनका नाम निर्देश करके इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। अब ये सर्व नौ सर्व वगैरह जो बातें बताई थी उसको बताएंगे। सर्व नौ सर्व प्रदेश विभक्ति। सर्व प्रदेश विभक्ति में सब प्रदेश और नौ सर्व प्रदेश विभक्ति में उससे न्यून प्रदेश विवक्षित है। मूल और उत्तर प्रकृतियों में ये यथा योग्य ओह और आदेश से घटित कर लेने चाहिए। अब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति। सबसे उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति है और उससे न्यून प्रदेश अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियों के ओह और आदेश से जहाँ पर ये जितने संभव हो उन्हें उस प्रकार से जान लेना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति। सबसे कम प्रदेश जघन्य प्रदेश विभक्ति है और उनसे अधिक प्रदेश अजघन्य प्रदेश विभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियों के ओघ और आदेश से जहाँ पर ये जिस प्रकार प्रदेश संभव हो उन्हें उस प्रकार से जान लेने चाहिए। सादी अनादि ध्रुव अध्रुव प्रदेश विभक्ति। सामान्य से मुनि के क्षय होने के अंतिम समय में जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है और इससे पूर्व सब अजघन्य प्रदेश विभक्ति है। अतः अजघन्य प्रदेश विभक्ति सादी विकल्प के बिना यदि घट जाते हैं जैसे अनंतानुबंधी में कम होता है फिर बढ़ता है तो उसको हम सादी भी कहेंगे। तो जैसे मिथ्यात्व जो है उसको अजगन्य के लिए सादी कहेंगे क्या नहीं कहेंगे?
नहीं
कहेंगे, क्योंकि अजगन्य जो है वो अनादि से चला आ रहा है और जब क्षपणा होगी तो ही जगन्य होगा। एक बार क्षपणा होने के बाद फिर अजगन्य होने का कोई सवाल नहीं है, ख्याल में आती है? क्योंकि यहाँ सत्ता की बात चल रही है। तो कहते हैं अजगन्य प्रदेश विभक्ति सादी विकल्प के बिना अनादि ध्रुव और अध्रुव यह तीन प्रकार की होती है। अनादि क्योंकि चली आ रही है और ध्रुव किसके लिए? अभव्यों के लिए। अध्रुव भव्यों के लिए। अब रही उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्तियां। तो ये सादी और अध्रुव इस तरह दो प्रकार की ही होती है, क्योंकि उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट होती है तो उसको अनादि नहीं कह सकते। जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपणा के अंतिम समय में होती है इसलिए वह सादी और अध्रुव है, क्योंकि अन्यत्र वो जघन्य पाई नहीं जाती है। तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कादाचित कहे, कादाचित कहने कभी होती है, इसलिए ये भी सादी और अध्रुव है, यह ओघ प्ररूपणा है। आदेश से सब गतियाँ परिवर्तनशील है, अतः उनमें उक्त सब प्रदेश विभक्तियाँ सादी और अध्रुव ही होती है। ये समझ में आती है, कोई गति अनादि से नहीं है ना, तो ये सब प्रदेश विभक्ति उसमें सादी और अध्रुव होगी। आगे अन्य मार्गणाओं में भी इसी प्रकार विचार कर घटित कर लेना चाहिए। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मिथ्यात्व मध्य की आठ कषाय मध्य की है अप्रत्याख्यान प्रत्याख और पुरुष वेद के बिना आठ नौ कषाय इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपणा के अंतिम समय में प्राप्त होती है। सामान्य से लिए ना मोहनी की सामान्य से लिया है तो उनमें भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होती रहेगी। उनके लिए वो मार्गणा के लिए उत्कृष्ट कहलाएगी, उसके लिए उत्कृष्ट भले नहीं हो उस मार्गणा के लिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जो है वो भी सादी होगी। यानी उनके लिए भी ये जो उनके लिए जो जघन्य है वो भी सादी है, उनके लिए जो अजघन्य है वो तो अनादि से चला आ रहा है, उनमें भी ये बात घटित होगी। हाँ, परंतु मार्ग गति मार्गणा में लगाने हैं तो अकेले निगोध नहीं लगा सकते, उसमें तो तीरंज गति में एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय सब आ जाएगी, तो उसमें भी ये बात घटित होगी। और जब हम गति कहते हैं मार्गणा में तो अन्य गति से आया हुआ जीव लेना चाहिए। ओघ में तो हम अनादि वाला वो ले सकते हैं, परंतु जब गति मार्गणा कहेंगे उसका काल कहेंगे तीरंज गति का काल, तो ऐसा लेना कि अन्य गति से तीरंज में आया है, फिर उसको असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक आप ले जाओ। यहाँ क्या कहते हैं, क्षपणा के अंतिम समय में किस किस का जघन्य है, मिथ्यात्व का आठ कषायों का,
पुरुष वेद के सिवाय
पुरुष वेद बिना आठ नौ कषायों का,
सज्जोला का भी अर्ध प्रवृत्तकरण में ही होता है ना,
परंतु क्षपणा का अंतिम समय नहीं हो, यहाँ क्षपणा के अंतिम समय की बात चल रही है, क्योंकि पुरुष वेद का भी जघन्य वहां पर है अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, इसलिए इनको छोड़ा है। अतः इनकी भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्तियां सादी और अध्रुव तथा अजघन्य प्रदेश विभक्तियां अनादि ध्रुव और अध्रुव होती है। पुरुष वेद से उदय से पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ जो गुणित कर्मांशिक वाला जीव, अभी उत्कृष्ट बता रहे हैं गुणित वाला बता रहे हैं ना पहले, जब स्त्री वेद की अंतिम फाली को पुरुष वेद में संक्रमित करता है, कंडीशन क्या है, पुरुष वेद के उदय सहित क्षपक श्रेणी पर चढ़ने जाना चाहिए, क्षपक श्रेणी चाहिए गुणित कर्मांशिक वाला, और स्त्री वेद की अंतिम फाली को पुरुष वेद में संक्रमित करता है, उसके पहले उसने नपुंसक वेद को भी संक्रमित कर चुका है वो, तब पुरुष वेद की एक समय के लिए, एक समय क्यों, क्योंकि उसके भी पुरुष वेद का है तो उसका उदय भी चल रहा है, उसकी गुण श्रेणी वाली गोपुच्छा भी जा रही है, एक समय के लिए उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यही जीव जब पुरुष वेद और छह नौकषायों के द्रव्य को संज्वलन क्रोध में संक्रमित करता है तब संज्वलन क्रोध की एक समय के लिए उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन क्रोध के द्रव्य को संज्वलन मान में संक्रमित करता है तब संज्वलन मान की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन मान के द्रव्य को संज्वलन माया में संक्रमित करता है तब संज्वलन माया की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, तथा यही जीव जब संज्वलन माया के द्रव्य को संज्वलन लोभ में संक्रमित करता है तब संज्वलन लोभ की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है। तथा इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति अपनी अपनी क्षपणा के अंतिम समय में होती है। वो हमने अध प्रवृत्ति की बात की देखी ना, वो दूसरे नीचे वाले स्पर्धक के लिए परंतु इनकी भी अपने नवक समय प्रबंध के अंतिम समय में जघन्य होगी। हमने नीचे वाले स्पर्धक में जघन्य देखना था, तब अध प्रवृत्तकरण को याद किया।
नहीं, पुरुषवेद की तो ऐसे भी अध प्रवृत्तकरण में ही होगी ना,
एक फाली लास्ट नवक समय प्रबंधि की एक फाली बाकी है ना, तब अपगत वेद होने पर दूसरे आवली का जो त्रिचरण समय।
चंद्रदत्त की कावली माइनस एक समय में,
इन्हें ऊपर जो उनकी क्षपणा के अंतिम समय में लिखी थी, तो उनकी वो जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वगैरह सब घटित करने के लिए वहां पर, यहाँ भी क्षपणा के अंतिम समय में ही होगा। इस प्रकार इन पांचों की उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्ति एक समय के लिए होती है, इसलिए ये सादी और अध्रुव है। ऊपर जो उसको अलग से बताया था तो इसको एक समय का घटित करना था ना, इसलिए पुरुष वेद को वहां से निकाला था, अलग से बताया था। तथा इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति अनादि ध्रुव और अध्रुव है। एक पुरुष वेद और संजुल
शकना
के समय में उसकी जघन्य है, ऊपर इसलिए हटाया था कि उनके, देखो ये ऊपर की पढ़ा, जैसे ऊपर से छठी लाइन देखो, छठी लाइन में उत्तर प्रकृति उनके अपेक्षा मिथ्या, तो मध्य के आठ कषाय पुरुष वेद के बिना आठ नौ कषाय, इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपणा के अंतिम समय में प्राप्त होती है, इसलिए आगे का जो उन्होंने घटित किया ना, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश विभक्तियां सादी और अध्रुव है। अब यहाँ नीचे देखो, इसमें भी सादी और अध्रुव है, क्योंकि वो एक समय के लिए होती है, और अजगन्य अनादि ध्रुव और अध्रुव। मात्र पुरुष वेद का जघन्य प्रदेश ये यहाँ लिया, पुरुष वेद को अंतिम समय में नहीं लिया, क्रोध को लिया वहां पर। पुरुष वेद का जघन्य प्रदेश, जघन्य प्रदेश कर्म सत्कर्म क्षपित कर्मांश अदब प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होती है,
इसलिए ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ, लोक का,
हाँ लोक का भी होगा वैसा ही, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति सादी भी बन जाती है। सादी भी करना है ना, क्योंकि पहले जघन्य होकर अजघन्य हुई थी, इसलिए उसको सादी कहेंगे। तथा इन पांचों की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार की है, क्योंकि बीच में एक समय के लिए उत्कृष्ट हो गई ना उनकी, और बाद में अनुत्कृष्ट हुई क्षपणा में, जब अन्य इसमें संक्रमित हुआ तो उत्कृष्ट हुई थी, बाद में अनुत्कृष्ट हुई तो उसके लिए आदि हो गई। जब इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक यह अनादि है, ये जो अनुत्कृष्ट है वो अनादि से है। मिथ्यात्वादी में अनुत्कृष्ट को अनादि से नहीं कहा, क्योंकि कभी उत्कृष्ट होता था कभी अनुत्कृष्ट होता था, क्योंकि वहां तो बनने पर उत्कृष्ट हो जाता था। यहाँ पर कैसे, जब क्षपणा के समय में स्त्रीवेद की अंतिम फाली इसमें आती है तब इसका उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट के लिए आदि है। जब तक उत्कृष्ट नहीं हुई, जब तक क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ाया, तो अनादि से अनुत्कृष्ट है, इसलिए यहाँ पर अनुत्कृष्ट को अनादि वाला लिया, इसलिए उसको वहां उस लिस्ट में नहीं लेते हुए अलग से बताया। यानी जब तक उत्कृष्ट नहीं प्राप्त होती है, जब तक क्षपणा नहीं होती है, तब तक तो ये अनादि है। ध्रुव अध्रुव तो भव्य अभव्य की अपेक्षा,
तो उत्कृष्ट भी गुणित कर दो वाले को ही होगी, बाकी को नहीं होगी।
होगी, परंतु कभी स्त्रीवेद वो पुरुषोवेद में संक्रमित हो जाएगा।
नहीं, तब जो गुणित कर्मों से फल है
हमें सर्वोत्कृष्ट गुणित कर्मों में ही लेना है।
हाँ।
और वो भी क्षपणा में लेना है।
हाँ।
तो जब तक क्षपणा नहीं होती है तब तक वो क्या कहेंगे हम?
अनुत्कृष्ट,
अनादि से अनुत्कृष्ट है। अब एक समय के लिए उत्कृष्ट हो गए, उसके बाद क्या कहेंगे?
अनुत्कृष्ट हो गए।
अनुत्कृष्ट वो अनुत्कृष्ट शादी भी हुआ।
हाँ।
एक तो अनादि से था ही था, एक समय के लिए उत्कृष्ट होकर फिर अनुत्कृष्ट हुआ, तो अनुत्कृष्ट के लिए अनादि और शादी दोनों ही घटित हो गए। यानी उत्कृष्ट के बाद यह शादी है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये प्रकृतियां शादी और शांत है, ये प्रकृतियां ही शादी शांत है, इसलिए इनके चारों ही पद शादी और अध्रुव हैं। समझ में आती बात?
हाँ।
चारों कौन से पद?
शादी, अनादि,
उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य,
जगन्य।
चारों पद में उसको लेना, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य। अनंतानुबंधी चतुष्कपी, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्तिया कादाचित है। जगन्य प्रदेश विभक्ति क्षपणा के अंतिम समय में होती है, इसलिए तीनों सादी हैं। अनंतानुबंधी का चतुष्क का जो गुणित कर्मांशिक में ज्यादा बंध करेगा तब उसके मैक्सिमम होंगे। फिर अनुत्कृष्ट कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट, तो कादाचित का। और जगन्य कब होती है? क्षपणा के अंतिम समय में, क्षपणा ने इसके विश्वजना के अंतिम समय में, वो भी हमने पहले प्राप्त कराया, बहुत बार संयम वगैरह कराया, फिर अंत में जाकर उसको विश्वजना करना, तो इसकी जगन्य होगी।
बीच में अंतर्मुक्त में मिथ्यात्व में गया, पहले बीच से योजना की, अंतर्मुक्त में
मिथ्यात्व में गया, फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया,
132 सागर तक
घुमा, 132 सागर तक रहा, फिर जाके क्षपणा की, क्षपणा के पहले अभी से योजना करेगा तब इसके जगन्य हो जाएगा। उसके लिए वो क्षपित कर्मांशिक के सारे नियम गठित करना है, इसके ऊपर एक इंद्रिय में गया, ये वो सभी बातें। तथा क्षपणा के पूर्व इसकी अजगन्य प्रदेश विभक्ति नियम से होती है, इसलिए तो यह अनादि है। यानी क्षपणा के अंतिम समय तक उसमें तो जगन्य हो जाएगी, उसके पहले
अजगन्य।
तथा क्षपणा के बाद पुनः संयुक्त होने पर, क्षपणा ने विसंयोजना लेना हो, पुनः संयुक्त होने पर यह शादी है। यानी जब तक विसंयोजना नहीं हुई है तब तक तो अनादि है, और विसंयोजना के बाद फिर दोबारा होती है तब भी अजगन्य कहेंगे, तो उसको हम शादी कहेंगे, पहले वाले अनादि थे। तो यहां जो क्षपणा की कही है बात, क्षपणा यानी विसंयोजना लेना, ध्रुव और अध्रुव विकल्प तो यहाँ संभव है ही, इस प्रकार इनकी अजगन्य प्रदेश विभक्ति चारों प्रकार की प्राप्त होती है अनंतानुबंधी में। यह ओघ प्ररूपणा है, आदेश से अचक्षु दर्शन और भव्य मार्गना में ओघ प्ररूपणा बन जाती है, क्योंकि अचक्षु दर्शन तो है अनादि से है, जब तक वो केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करता तब चक्षु दर्शन सब जीवों के पर्याप्त हो अपर्याप्त हो किसी भी जीव समाज में क्यों न हो। मात्र भव्य मार्गणा में ध्रुवभंग संभव नहीं है, शेष सब मार्गणाएं परिवर्तनशील है। क्या कहते हैं? अचक्षु दर्शन ये मार्गणा अपरिवर्तनशील है, जब तक है तब है ही, भव्य मार्गणा भी है परंतु भव्य में वो ध्रुव वाला भंग नहीं कहना, अध्रुव कहना। शेष सब मार्गणाएं परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, शादी शांत है, अन्य अन्य मार्गणाओं में बदलती रहती है।
भव्य में ध्रुव भी हो जाएगा ना, क्योंकि कितने भव्य ऐसे, भव्य में ध्रुव भी हो सकता है ना, क्योंकि कितने भव्य ऐसे,
जब भव्य कह दिया ना तो उसमें अध्रुव लिखना, ध्रुव नहीं लिखना। अतः उनमें सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट आदि चारों विभक्तियां सादी और अध्रुव ही प्राप्त होती है। अब स्वामित्व जो हम देख चुके हैं, सामान्य से मोहनीय की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी ये मोहनीय इन जनरल लिया, ऐसा गुणित कर्मांशिक जीव होता है जो बादर पृथ्वी कायिकों में और बादर त्रसों में परिभ्रमण करके अंत में दो बार सातवें नरक के नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त कम पूरी आयु बिता चुका है। मैंने कोई कहते अंतिम समय में, कोई कहते अंतर्मूर्त पहले। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी किस समय होता है, इस संबंध में दो मत है। एक मत के अनुसार अंतर्मूर्त नरकायु शेष रहने पर उसके प्रथम समय में होता है और दूसरे मत के अनुसार नरक के अंतिम समय में होता है। ये उत्कृष्ट की बात चल रही है। मिथ्यात्व 12 कषाय और 6-9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। जो गुणित कर्मांशिक दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव जब मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमित करता है, गुणित कर्मांशिक वाला, तब वह सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। और जब वही जीव सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में संक्रमित करता है तब सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। ये ख्याल में आई बात? जघन्य में हम उद्वेलना वाला लेते हैं और उत्कृष्ट में क्षपणा में जब जिस समय संक्रमित होता है अंतिम स्थिति कांड तब लेना उसका। नपुसक वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी ऐसा गुणित कर्मांशिक जीव होता है जो अंत में ईशान कल्प में उत्पन्न होकर अंतिम समय में स्थित है। ये नपुसक वेद के लिए स्पेशलिटी। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, मात्र इसे अंत में असंख्यात वर्ष की आयु वालों में उत्पन्न कराकर पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल के द्वारा स्त्री वेद का पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए। जो गुणित कर्मांशिक जीव पूरण कराने उसके अधिक से अधिक बंद कौन करता है, तो पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक लगातार वो बंद करता है। उसके लिए भी हमने देखा था ना, स्त्री वेद का पूरण कराकर प्राप्त कराना चाहिए। देखो गुणित कर्मांशिक से आया है, बाकी तो उसने जैसे नपुसक वेद के लिए ईशान स्वर्ग में भेजा था, ऐसे स्त्री वेद के लिए तीन पल्ले की आयु वालों में भेजना है और आयु के भोग भूमि में, आयु के अंत में पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक वो स्त्री वेद को पूरता है ने, उसका मैक्सिमम बंद उसके होता है, ये बात बताना चाहते। जो गुणित कर्मांशिक जीव क्रम से नपुसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद को यथा योग्य पूर कर, यथा योग्य पूर करने मैक्सिमम उसके बंद की अपेक्षा मैक्सिमम उसने बंद किया है, अंत में मनुष्यों में उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मों का क्षय करता हुआ जब स्त्री वेद को पुरुष वेद में संक्रमित करता है, तब पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। क्योंकि उसने स्त्री वेद उत्कृष्ट बांधा है और जब वो समय संक्रमित होगा तभी पुरुष वेद का उत्कृष्ट होगा। वही जीव जब पुरुष वेद को क्रोध संज्वलन में संक्रमित करता है तब क्रोध संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। वही जीव जब क्रोध संज्वलन को मान संज्वलन में संक्रमित करता है तब मान संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। पहले भी यही बात होती, यहाँ स्वामित्व की अपेक्षा बता रहे, वहां प्रदेशों की अपेक्षा बता रहे थे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात कर रहे थे। वही जीव जब मान संज्वलन को माया संज्वलन में संक्रमित करता है तब माया संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। और वही जीव जब माया संज्वलन को लोभ संज्वलन में संक्रमित करता है तब लोभ संज्वलन की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। यह ओभ से उत्कृष्ट स्वामित्व है। इसके बाद जब हम काल देखेंगे ना, तो उत्कृष्ट का काल यहाँ एक समय घटित होगा। इस प्रकार एक समय के लिए उसने अंतिम समय में उसने उत्कृष्ट बना लिया, अंतिम स्थिति कांडक हुआ, अंतिम पाली। ओह से सामान्य मोहिनी की जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी। अभी जघन्य की बात है, अभी तक हम उत्कृष्ट देख रहे थे। क्षपित कर्मांशिक जीव क्षपणा के अंतिम समय में होता है, ये मोहिनी इन जनरल बात की। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी ऐसा क्षपित कर्मांशिक जीव होता है जो अंत में दर्शन मुखी क्षपणा करते समय मिथ्यात्व की दो समय काल वाली एक स्थिति को प्राप्त है, तथा वही जीव जब दर्शन मुखी क्षपणा किए बिना मिथ्यात्व में जाकर, किए बिना का अर्थ क्या है, क्योंकि उसके पहले वो दो छासर सागर वगैरह सब कंडीशंस पूरी की थी, अब क्षपणा करने के बदले मिथ्यात्व में गया है और फिर उद्वेलना कर रहा है, इसलिए वही जीव यानी वो कंडीशन सब उसमें लागू होती है। जब दर्शन मुखी क्षपणा किए बिना मिथ्यात्व में जाकर दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा, वो भी दीर्घ लिया, सम्यक तो असम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करते हुए अपने अपने समय में दो समय काल वाली एक स्थिति को प्राप्त होता है। अपने अपने समय ने पहले सम्यक की उद्वेलना पूरी होती है और बाद में समय मिथ्या, इसलिए अपना अपना अंतिम समय लेना वहां, तब वह सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति का स्वामी होता है। मध्य की आठ कषायों के विषय में ऐसा क्षपित कर्मांशिक जीव लेना चाहिए जो अभव्यों के योग्य जघन्य प्रदेश विभक्ति करके त्रसों में उत्पन्न हुआ है, यानी वो सूक्ष्म एकेंद्रियों में रहा और वहां आगमोक्त क्रिया व्यापार द्वारा, आगमोक्त क्रिया व्यापार क्या क्या कर रहे हैं,
संयम संयमाचरण,
हाँ बहु असंख्या द्वार संयम संयमा संयम वगैरह अनंतानंद की विसर्जना, चार बार श्रेणी चढ़ के उतरा, तो आगमोक्त क्रिया व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अंत में क्षपण कर रहा है, यानी पहले वो कर चुका उसने आठ कषायों को, तो श्रेणी भी चढ़ के उतरा तो उसका भी उसने अन्य में संक्रमित कर दिया। ऐसे जीव के जब इनकी दो समय काल वाली एक स्थिति शेष रहती है, तब वह इनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। वही जीव जब अनंतानुबंधी की बार बार विसर्जना कर लेता है और अंत में, ये बार बार लिखा है ना, दो छासर सागर काल तक सम्यक्त्व का पालन करके पुनः उसकी विसर्जना करता है, तब वह अनंतानुबंधी चतुष्क की दो समय काल वाली एक स्थिति के रहते हुए उनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। नपुसक वेद और स्त्री वेद का भी क्षपित कर्मांशिक जीव ही अपनी अपनी क्षपणा के अंतिम समय में उदय स्थिति के सद्भाव में, उदय स्थिति का सद्भाव है क्षपणा का अंतिम समय जो उदय रूप निषेक है, एक निषेक और संक्रमित होता है, जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी होता है। पुरुष वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी ऐसा क्षपक पुरुषवेदी होता है, यानी पुरुषवेद सहित चढ़ने वाला है, जो जघन्य गोलमान योग से पुरुषवेद का बंध करके उसका संक्रमण करते हुए अंतिम समय में स्थित है।
ये नौ समय पर बच्चे होते
हैं। हाँ। अधप्रवृत्त करण में जो लिया था ना, देखो यहाँ पर जो हमने देखा था, ये चारों पद वहाँ घटित करने थे उनको, फिर शादी होता है इसलिए उसको लिया था। देखो आठ पृष्ठ पर बीच में ही है, मात्र पुरुषवेद का जघन्य प्रदेश सत्तम क्षपित कर्मांशिक अधप्रवृत्त करण के अंतिम समय में होती है। इसलिए अजगण्य प्रदेश भक्ति सादी भी बन जाती है।
तो यहाँ पे अधप्रवृत्त वाला लेने का कि सपना का नवक समय प्रवृत्त जो, क्योंकि नवक समय प्रवृत्त जो बनता है उसपे फाली रूप जो लास्ट फाली जब
अंतिम फाली है।
हाँ।
तो यहाँ दोनों जगह घटित किया, तो वहां पर भी लिया है।
हाँ।
और ऊपर भी बताया था सपना के अंतिम समय में होती है, ऐसा भी बताया। हाँ। था पांचों का यहाँ लिखा ना, अपने अपने जगन्य प्रदेश विभक्ति अपने अपने अंतिम समय में होती है।
लेकिन जब वो सपना में होता है तब तो वो अवेदी हो गया था।
नहीं, सत्ता की बात है,
पुरुष वेद का जगन्य, ये वेद मार्गणा नहीं चल रही है। पुरुष वेद का जगन्य कब होता है, तो दोनों जगह लिए शब्द।
पर अध प्रवृत्त में जितना होगा उससे तो ये नवक समय प्रवृत्त वाला जो होगा वो ही कम होगा ना,
वो तो कम। हाँ, जगन्य योग से बंधा हुआ नवक समय प्रवृत्त का वही मिनिमम होगा, एक ही फाली रही है वहाँ पर। फिर भी वहाँ उसको बाद में अजगण्य को सादी भी गठित किया है उन्होंने,
तो वहाँ पे भी जगन्य इतना हो सकता है।
इसका अर्थ तो दोनों जगह होता होगा ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि बाकी भी घटित किया ना, उसके बाद अजगण्य फिर दोबारा होता है।
क्योंकि अधप्रवृत्तकरण के अंत में तो स्थिति भी बहुत लंबी रहती है, तो वहाँ पे एकदम जगन्य तो नहीं होगा जो ये 8 साल की स्थिति वाला जो सपना कर रहा है।
या ऐसा ले सकते ना, आदेश से अगर लेना है, आदेश में अगर घटित करना है, आदेश का अर्थ क्या मार्ग नहीं तो सवेदी वाला लेना, पुरुष वेदी जीव। पुरुष वेदी कब कहेंगे, जब तक उसका उदय है, यानी उदय होते हुए जगन्य कब है,
अधप्रवृत्त और अवेदी के अंत में जो होता है
वहाँ घटित होगा वो मार्गणा में, क्योंकि ऊपर देखो ये आदेश से ही बात चल रही थी। इन्हें ओब से अगर, हाँ, चौथी लाइन आदेश से लिखा है वहाँ पर,
नहीं पीछे वापस वहाँ पर तो ओब से सामान्य बौद्धिक का जगह, ये बीच पे ओब का भी आ गया है, ओब से सामान्य बौद्धिक का जगन्य प्रदेश विभक्त का स्वामित्व स्थापित कर
उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा। हाँ, ऊपर तो जगह सामान्य की अपेक्षा थी।
हाँ,
फिर उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा लिया, यानी मात्र पुरुष वेद का जगन्य प्रदेश 70 में ऐसा लिखा था, यानी उसमें जगन्य वहां पर भी लिया। अभी वो वेद मार्गणा की अपेक्षा लिया उसका, क्योंकि एक है अपगत वेदी हो जाता है, एक है इन जनरल पुरुष वेद का जगन्य कहा है। अब दूसरी बात है, जब सवेदी है पुरुष वेद के उदय होते हुए जगन्य कहा है, ऐसा भी ले सकते हैं। अभी दोनों जगह जगन्य उतना ही है कि नहीं उसको पता नहीं अपने को,
क्योंकि वो 8 साल की स्थिति वाला है, वो तो बहुत लंबी स्थिति वाला
वो तो,
और वहाँ पे तो कितने
वहाँ तो पहले से भी सारे चले आ रहे हैं। नहीं, मार्गणा की अपेक्षा लेते तो घटित होता है। इसी प्रकार ये नीचे से पांचवी लाइन लास्ट 9वें पेज पर, इसी प्रकार संज्वलन क्रोध मिला, मान और माया की जगन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी घटित कर लेना चाहिए, यानी अंतिम समय में जगन्य गोलमान से वगैरह बांधा है वगैरह। लोभ संज्वलन की जगन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी अधकरण के अंतिम समय में होता है, क्षपक क्षपक अध्योक्तरण तथा 6 नौकषायों की, उसमें हमने देखा था ना जो उत्तम श्रेणी नहीं चढ़ा ऐसा जीव लिया था। क्योंकि नहीं तो लोभ में संक्रमित होता है अन्य द्रव्य गुण संक्रमण के द्वारा, तथा 6 नौकषायों की जगन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी भी ऐसा क्षपक होता है जो अंतिम स्थिति कांडक के संक्रमण के अंतिम समय में स्थित है।
पुरुष वेद के लिए भी ऐसा ही लेना पड़ेगा ना, जो श्रेणी नहीं चढ़ा है।
जगन्य में क्या उत्कृष्ट में,
जगन्य में जो अधप्रवृत्तकरण के अंत में देखा था, तो पुरुष वेद में भी श्रेणी नहीं चढ़ा है उत्तम श्रेणी, ऐसा ही भी लेना पड़ेगा।
ऐसा तो कहीं उन्होंने लिखा नहीं है उसमें। ये ओह से जगन्य स्वामित्व है, आदेश से मूल और उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट और जगन्य स्वामित्व चारों गतियों की अपेक्षा से तो मूल में ही कहा है, इसलिए वहां से जान लेना चाहिए। तथा अन्य मार्गणाओं में उक्त स्वामित्व को देखकर घटित कर लेना चाहिए। यहाँ पर मूल में जघन्य प्रदेश सत्कर्म से लेकर उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म तक किस प्रकृति के सांतर और निरंतर कितने स्थान किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह सब कथन विस्तार के साथ किया है, तो उसे वहाँ मूल में ही देखकर समझ लेना चाहिए। उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ लिया।
अलग
अब काल की प्ररूपणा होगी। अब यहाँ पर जो काल लिखा है वो एक जीव की अपेक्षा काल है। अभी केवल यहाँ काल वाला प्रकरण पढ़ के फिर हम
आगे चल
मूल पुस्तक पर चले जाएंगे। देखो काल सामान्य से मोनी का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म 33 सागर की आयु वाले नारकी के अंतिम समय में होता है, इसलिए इसका जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी काल का अर्थ क्या है? लगातार। यदि हम उत्कृष्ट की बात करते हैं तो लगातार उत्कृष्ट कितने समय तक रह सकता है उसकी बात। इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, अभी अनुत्कृष्ट का कम से कम काल और अधिक से अधिक काल, तो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति जो उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म करके एकेंद्रियों में उत्पन्न हुआ है, यानी वो उत्कृष्ट के एक शुरुआत है फिर अनुत्कृष्ट में आया, यानी अनुत्कृष्ट का बिगिनिंग हो गई है, उसके अनंत काल तक देखी जाती है, इसलिए इसका जगन्य और उत्कृष्ट काल अनंत काल है। जो उत्कृष्ट करके एकेंद्रियों में आया उसकी बात है, किंतु यदि परिणामों की परिमाणों की मुख्यता से देखा जाए परिमाण, तो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल असंख्यात लोक प्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब प्रकार के प्रदेश सत्व के कारणभूत परिणाम ही असंख्यात लोक प्रमाण है। क्या कहते हैं? परिणामों की अपेक्षा ये बात की है, क्योंकि उत्कृष्ट के कारणभूत एक परिणाम किया जीव ने, अनुत्कृष्ट वाले परिणाम होते रहे तो लगातार एक 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 अलग अलग परिणाम होता रहा उसका, तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, तो असंख्यात लोक प्रमाण समय लगेंगे उसको फिर वापस उस मूल उस पर आने के लिए। और जिसने सातवें नरक में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म करके यथाविधि मनुष्य पर्याप्त पर्याय प्राप्त कर 8 वर्ष की अवस्था में ही शपक श्रेणी पर आरोहण कर मोनी का नाश किया है, उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल 8 वर्ष अधिक अंतर्मूल प्राप्त होता है। देखो कैसी विचित्रता है, गुणित कर्मांशिक उत्कृष्ट करके आया है, नरक से सातवें नरक से निकला है, यथाविधि कहा ना, डायरेक्ट मनुष्य में नहीं लाया,
क्योंकि सातवें नरक से तो मनुष्य पे जाता है वो
तिरेंच में जाएगा, तिरेंच में अंतर्मूर्त की तो आयु करेगा कि नहीं करेगा,
पीछे मनुष्य
पर्याप्त होगा तिरेंच तो उसमें अंतर्मूर्त में मर सकता है, तो जघन्य काल 8 वर्ष अधिक अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। मिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रकृतियों की, अवान्तर यानी उसके जो भेद है उसको अवान्तर कहेंगे, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का यह काल इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र कुछ प्रकृतियों के काल में कुछ विशेषता है।
ये अनुत्कृष्ट का ये जघन्य काल 8 वर्ष पता है तो उससे कम नहीं हो सकता है।
अनुत्कृष्ट कब लेना? उत्कृष्ट के बाद लेना।
हाँ।
तो जो उत्कृष्ट का स्वामित्व है उसके बाद हमको लेना चाहिए।
अच्छा, वो
उत्कृष्ट का स्वामित्व गुणित कर्मांशिक वाला नरक के अंतिम समय में घटित।
हाँ।
तो सातवें नरक से नियम से निकल कर तो तिरेंच में जाता है, तो वहां से निकल कर फिर मनुष्य में जा सकता है। तो यथा योग्य उसका भी अंतर्मूर्त उसमें ले लेना।
हाँ।
उसका अंतर्मूर्त वो 8 वर्ष अंतर्मूर्त।
हाँ। 8 साल।
हाँ। कहाँ विशेषता है उसको भी बता दे। यथा अनंतानुबंधी की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, जो अंतर्मूर्त के अंतर से 2 बार विसंयोजना करता है उसके होती है। 1 बार विसंयोजना की थी
अंतर्मूर्त के लिए कर।
इसलिए उसका जगन्य काल मात्र अंतर्मूर्त ही प्राप्त होता है। ये अजगन्य होगी 2 बार नहीं
नहीं, नहीं अंतर्मूर्त के लिए अजगन्य हो गई, विसंयोजना की वापस हम नित्यत्व में गया।
अनुत्कृष्ट लगा रहे हैं।
हाँ, अनुत्कृष्ट के लिए अंतर्मूर्त हो सकता है ना, क्योंकि विषयोत्ना वाला जीव जब भी नित्यात्म में जाता है और वापस अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त करके विषयोत्ना करता है, तो अंतर्मूर्त के लिए अनुत्कृष्ट हो गई ना।
उत्कृष्ट कब हुई थी?
नहीं, ये अनुत्कृष्ट का अंतर। अच्छा,
अच्छा वो नहीं थी और अनुत्कृष्ट था, ऐसा लेना। ये थी ही नहीं। देखो अब
पहले अनुत्कृष्ट थी, पीछे विसंयोजना की।
देखो विसंयोजना की तो सत्ता में ही नहीं थी। हाँ। पहले अनुत्कृष्ट थी, सत्ता में से चली गई।
हाँ।
और फिर सत्ता में आई तो भी अनुत्कृष्ट।
हाँ, और वापस
और फिर वो। हाँ। यानी सत्ता में नहीं थी ना, बीच में उत्कृष्ट बनाने की जरूरत नहीं है।
नहीं, ये विसंयोजना की अपेक्षा ही बताया ना।
विसंयोजना, एक बार विसंयोजना की तो सत्ता में से नाश हुआ।
हाँ।
फिर मिथ्यात्व में आए तो सत्ता में आई।
हाँ, और
तो
वापस
कैसे आई तो अनुत्कृष्ट रही।
हाँ।
फिर विसंयोजना की तो सत्ता में से नाश हुआ। तो मिथ्यात्व में जब तक था और समय तो प्राप्त कर, जब तक विसंयोजना नहीं हुई थी
अंतर्मूर्त के लिए,
अंतर्मूर्त के लिए अनुत्कृष्ट था। दोबारा विसंयोजना की तो उसका विनाश हुआ। जैसा कि स्वामित्व में बतलाए हैं, 4 संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति यथा योग्य क्षपक श्रेणी में होती है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल अनादि अनंत। यानी जिसने कभी क्षपणा की ही नहीं उसके अनादि अनंत, अनादि शांत भव्यों में जो क्षपणा करेगा, और सादी शांत। सादी शांत कैसा घटित करना है?
जो क्षपक श्रेणी में उत्कृष्ट की, वापस
क्षपक श्रेणी में उसने उत्कृष्ट की थी जब अन्य इसमें आ गए तब, और बाद में अनुत्कृष्ट हुई अंतर्मूर्त में क्षपणा पूरी हो गई तो उसका सादी शांत काल होगा। अनादि अनंत काल अभव्यों के होता है। अनादि शांत काल अपनी अपनी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के प्राप्त होने के पूर्व तक भव्यों के होता है, और सादी शांत काल ऐसे जीवों के होता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करके विभक्ति हुए, विभक्ति अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की है। मात्र इस प्रकार जो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति प्राप्त होती है वो अंतर्मूर्त काल तक ही पाई जाती है, क्योंकि अपना क्षपणा तो है नियम से, क्योंकि क्षपण हो जाने के जाने से आगे इन प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
ये अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त लेना है? नहीं, उत्कृष्ट तो
उत्कृष्ट काल कहाँ लिखा है?
अनुत्कृष्ट जगन्य और उत्कृष्ट काल
क्या कहा? मात्र इस प्रकार जो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, इस प्रकार शब्द लिखा है।
अच्छा,
इस प्रकार वाली बात है ना, यानी क्षपणा के बाद जो अनुत्कृष्ट होती है, ऐसे अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल कितना है?
अंतर्गत
और जगन अंतर्गत, क्योंकि उसका अंतर
समान ही हो जाएगा ना,
फिर भी उसी को जगन्य कहेंगे, उसी को उत्कृष्ट कहेंगे।
हाँ, दोनों समान ही होगा ना?
समान ही है, क्योंकि जहाँ एक समय वाली बात होती है, एक समय भी होता है, तो हम क्या कहते हैं, जगन्य भी एक समय, उत्कृष्ट भी एक समय। ऐसे यहाँ जगन्य भी एक अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, क्योंकि यहाँ पर अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में बात की, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के तो समय तो समान है सबके।
हाँ,
तो सबके लिए वही समानता, उसको जगन्य भी कह सकते, उत्कृष्ट भी कह सकते, यही है। जैसे एक समय के लिए हम जगन्य भी और उत्कृष्ट भी एक समय कहते हैं, वैसे यहाँ पर लेना अंतर्मूर्त के लिए। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक साधिक 266 काल तक सत्व पाया जाता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कम से कम अंतर्मूर्त काल तक कैसे हुआ? सत्व पाया जाता है,
सम्यक तो प्राप्त किया,
औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त किया,
क्षपणा कर दी,
फिर अंतर्मूर्त में औक्षमिक हुआ और उसने क्षपणा कर दी, तो अंतर्मूर्त तक ही उसकी सत्ता। और अधिक से अधिक
साधिक में पहले का
साधिक 266 सागर काल तक सत्व पाया जाता है। 266 सागर तक तो वो तो समय दृष्टि रह सकता है,
और पल्ले का
मिथ्यात्व में जाने के बाद भी पल्ले का असंख्यात्व भाव है, वो भी साधिक में ले लेंगे। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 266 सागर काल प्रमाण है। साधिक 266 10 पेज पर हम नीचे से 10वीं लाइन। सामान्य से मोहनीय की जगन्य प्रदेश विभक्ति सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होती है, सामान्य की बात की, इसलिए इसकी जगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अजगन्य प्रदेश विभक्ति काल अनादि अनंत और अनादि शांत है। एक बार क्षपणा होने पर फिर अजगन्य नहीं हो सकती। उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मिथ्यात्वादी 28 प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। जो अपने अपने जगन्य स्वामित्व के समय प्राप्त होती है, उसका समय एक है, तथा मिथ्यात्व 11 कषाय और 9 कषायों की अजगन्य प्रदेश विभक्ति का काल 11 में किसको घटाया?
लोक को छोड़ा, संयोजन लोक को।
अनादि अनंत और अनादि शांत है, अनाति हुए अनादि शांत है।
ये लोक को ही छोड़ा है ना?
हाँ, लोक को, क्योंकि लोक का जगन्य होकर फिर अजगन्य हो जाता है, क्योंकि अभवियों के इसका सर्वदा सद्भाव पाया जाता है, इसलिए तो अनादि अनंत विकल्प बन जाता है।
तो यहाँ पे नौ कषाय लिया, वहाँ पे पुरुष को भी छोड़ना चाहिए ना?
तो उसको भी अंतिम समय में लिया ना, पुरुष वेद में उस पद्धति से घटित करेंगे तो वो भी साधि शांत हो जाएगा। जैसे वहाँ पुरुष वेद पे घटित किया है, अनंत अनुमंदी में घटित किया है, लोभ में घटित किया है। हाँ, देखो, भव्यों के अपने जघन्य स्वामित्व के पूर्व तक यह विभक्ति पाई जाती है, इसलिए अनादि शांत विकल्प बन जाता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में क्षपणा करता है तो जघन्य काल अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल साधिक 266 सागर प्रमाण है। सो इसका खुलासा अनुत्कृष्ट के समान कर लेना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क की अजगण्य प्रदेश विभक्ति के 3 विकल्प होते हैं, अनादि अनंत अभव्यों में, अनादि शांत यानी विषय योजना पूरी होने के पहले तक, और सादी शांत दो विसंजना के बीच में जो अंतर है वो। इनमें से प्रारंभ के दो विकल्पों का खुलासा सुगम है। अब रहा सादी शांत विकल्प, सो इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि विसंयोजना के बाद इसकी संयोजना होने पर इसका कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक सत्व पाया जाता है। शादी हुआ ना उसके लिए। लोभ संज्वलन की अजघन्य प्रदेश विभक्ति के भी उक्त तीन विकल्प जानने चाहिए। मात्र इसके शादी शांत विकल्प का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि जघन्य कब होता है, क्षपणा करने वाले के अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में। उसके बाद नियम से वो दसवें गुण स्थान के अंत तक अंतर्मूर्त में पहुंचेगा ही,
शांत
तो वहां तक उसको अजघन्य कहने में आएगा। क्योंकि जघन्य प्रदेश विभक्ति होने के बाद इसका अंतर्मूर्त काल तक ही सत्व देखा जाता है। काल की अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियों की यह ओघ प्ररूपणा है। गति आदि मार्गणाओं में अपनी अपनी विशेषता को जानकर काल का विचार इसी प्रकार कर लेना चाहिए। अब अंतर की बात हम बाद में पढ़ेंगे, अब हम ग्रंथ की बात शुरू करते हैं। यहाँ पर जो काल नाम का अनुगम चल रहा है अपना, कालानुगम कहेंगे इसको, यहाँ से अभी हम प्रारंभ करते हैं। कालो कालो उच्चदिति वनिलम होदी, काल का काल लिखे ना सूत्र, काल का कथन करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मिच्छत्तस्य उक्कस्य पदेसि विहत्यो केवचिरं कालादो होदी, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीव का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्न उक्कसेन एक समो, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हमने देखा था ना वो गुणित कर्मोशिक वाला नरक के अंतिम समय में, तो एक समय के लिए उत्कृष्ट है। क्योंकि सातवीं पृथ्वी के नारकी के उत्कृष्ट आयु के अंतिम समय में ही उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म उपलब्ध होता है, इसलिए उसका समय एक ही है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विहत्यो केवचिरम कालादो होदी, अनुत्कृष्ट प्रदेश भक्ति का कितना काल है, प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं। ऊपर भी सब जगह प्रश्न चिन्ह नहीं डाला है, हिंदी में तो डालते हैं। केवचिरम कालादो होदी ऊपर पहला भी, पहली लाइन में भी है। देखो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का कितना काल है, यह सूत्र सुगम है। जहन्न उक्कसेन अनंत कालम असंख्येज्या पोगल परियर्ता, जघन्य और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है। क्योंकि एक बार वो उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट होकर एक इंद्रिय में आया है, अब जब तक जाकर फिर दोबारा पंचेंद्रियों में जाकर उत्कृष्ट नहीं करता है या फिर गुणित कर्मांशिक रूप से, तब तक उसका अनुत्कृष्ट रहेगा।
या फिर जघन्य काल भी अनंत ही है, जघन्य भी अनंत ही है,
जघन्य काल अनंत है।
उत्कृष्ट विभक्ति के
असंख्यात, देखो
अनुत्कृष्ट
अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल, ये चतुर्गति निगो। फिर दोबारा देखो अभी तो वो अनुत्कृष्ट शुरू हुआ है उसका, दोबारा वो सारा प्रोसेस करके फिर नरक में जाना चाहिए,
उत्कृष्ट करने के लिए,
तो उसका जघन्य काल भी अनंत काल हो जाता है।
अच्छा, वो पृथ्वी का एक दिन भेजेंगे,
वो पूरी सारे प्रोसेस हो जाएगी उसके। लगातार का काल अनुत्कृष्ट का वही तो है ना, तो वहां से आया है वो, शास्त्री को यहाँ क्या कहते हैं, चतुर्गति निगोद जीव की अपेक्षा काल का यह निर्देश किया है। नित्य निगोद जीव की अपेक्षा तो अनादि अनंत अनादि शांत काल होता है, क्योंकि जिन जीवों ने त्रस भाव को नहीं प्राप्त किया है उसके उत्कृष्ट द्रव्य की प्राप्ति संभव नहीं है। देखो शंका, नित्य अनादि शांत जो बाहर आ जाता है,
नहीं सर नित्य निगोद की बात है ना,
जब तक वो निगोद में है,
नहीं नित्य निगोद वाला तो निगोद नहीं रहेगा,
नित्य निगोद है आज तक वो नित्य निगोद में है।
अच्छा,
तो अभी बाहर पड़ा है ना, उसके नित्य निगोद पना ही खत्म हो गया है, तो उसका नित्य निगोद पना अनादि शांत हुआ कि नहीं हुआ? अब हम उसको अन्य जीव कहेंगे, अभी उसको निगोद नहीं कहेंगे, परंतु उसका अंत आ गया ना, नित्य निगोद पने का अंत आ गया उसके।
अच्छा मैं इसे पकड़ रहा था नित्य निगोद भी निगोद नहीं रहेगा।
नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है, रहेंगे हाँ। अनंत काल तक कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि नित्य निगोद पर्याय हमेशा बनी रहे, उसमें भव्य कितने हो गए, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, पड़े रहेंगे भव्य है। अरे देखो, एक निगोद शरीर के अनंत वे भाग प्रमाण जीव सिद्ध हो रहे, और उसमें कितने ही भव्य बने रहेंगे ना, उसमें उसी में से 6 महीने 8 समय में निकलते रहेंगे, तो उसमें कितने ही तो भव्य भी अंदर रहेंगे जो कायम नित्य निगोद रूप से ही रहेंगे, कभी निकलेंगे ही नहीं 3 काल में, उसमें योग्यता पड़ी है कि उसकी अनंतता का, यानी उसमें अभव्यों से भव्य भी अनंत गुणे वहां भी पड़े हैं, नित्य निगोद में पड़े, बाहर ही नहीं,
अभव्य से भव्य अनंत गुणे नित्य निगोद में पड़े।
अनंत वाला अनंत वाली बात तो वहीं पर घटित होती है, या इतर निगोद में घटित होगी मान लेते हैं। ये जो जघन्य काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन बताया, वो एक इंद्रियों की अपेक्षा ही बताया,
वो सोच रहे थे वो
एक शंका, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अनंत काल तक अवस्थान कैसे बन सकता है?
यही मेरा प्रश्न था,
ये आपका प्रश्न, क्योंकि समाधान, उत्कृष्ट प्रदेश स्थान से लेकर जघन्य प्रदेश स्थान तक जो अनंत स्थान है, उनमें अनंत काल तक अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं आता,
यहाँ पे अनंत स्थान
यानी उसको छोड़कर, अनंत स्थान का अर्थ क्या है, प्रदेश विभक्ति, एक परमाणु कम, 2 परमाणु कम, 3 परमाणु कम, ऐसे सभी स्थान को एक एक बार प्राप्त हो जाए।
अच्छा, पुद्गल परिवर्तन
जैसे हमने स्थिति विभक्ति में कैसा घटित किया था, असंख्यात लोग घटित किया था, अभी हमने पढ़ा ना विषय प्रकरण, विषय जो है विषय परिचय में, कि कोई उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति के बाद अनुत्कृष्ट बन जाता है, तो अन्य 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 विकल्प में ही वो तो घूमता रहे, उत्कृष्ट प्राप्त ही नहीं करे,
ये
तो बाकी कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण वहाँ स्थिति है, अब यहाँ प्रदेश कितने हैं, तो अनंत,
अनंत
है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कितने विकल्प है, अनंत विकल्प है, उत्कृष्ट को छोड़कर जघन्य में ही घूमता रहा हो, सॉरी अनुत्कृष्ट में, जघन्य में नहीं अनुत्कृष्ट में, यहाँ क्या लिखते, उत्कृष्ट प्रदेश स्थान से लेकर जघन्य प्रदेश स्थान तक जो अनंत स्थान है, उनमें अनंत काल तक अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं आता, उसी में घूमता रहेगा वो, उत्कृष्ट उसने फिर किया ही नहीं है, तो कितना अनंत काल बीत जाएगा। अन्नोवदेशो जघन्येन असंख्येजा लोगात्ति, ये एक उपदेश है, जघन्य काल भी अनंत है, उत्कृष्ट काल भी अनंत है। अन्य उपदेश क्या कहता है, अन्य उपदेश के अनुसार जघन्य काल असंख्यात लोक प्रमाण है, कारण कि जीवों के सब परिणाम असंख्यात लोक मात्र ही होते हैं, अनंत नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता। उनमें से उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म के कारणभूत परिणाम कलाप को छोड़कर, क्रिया कलाप वैसे परिणाम कलाप लिखा, शेष परिणामों के अवस्थित रहने का जघन्य काल असंख्यात लोक प्रमाण ही है। यानी परिणाम इतने हैं तो उसके बाद फिर वो दोबारा लौटकर उस उत्कृष्ट परिणाम तक आएगा ही। नहीं जाता है, वही तो उनका कहना है। देखो
नियम से जाएगा ही उत्कृष्ट वाला होते,
शेष परिणामों के अवस्थित रहे, अवस्थित है उतना ही, उसको उत्कृष्ट को छोड़कर अन्य परिणामों में रहने का काल कितना है,
असंख्यात लोक
प्रमाण, यानी उतने काल में लौटकर उत्कृष्ट तक आएगा ही।
नहीं, हमने तो ऐसे जीव ऐसे भी देखे जो कभी उत्कृष्ट प्राप्ति नहीं होता, अनुत्कृष्ट ही रहते हैं, आगे हमने पढ़ा था, तो वो अपेक्षा से अनंत
भी असंख्यात लोक प्रमाण काल गया था ना।
नहीं, अनंत काल जो उत्कृष्ट को उत्कृष्ट
इसीलिए दो मत इसीलिए दिए ना, वो पर्टिकुलर जीव उसको नहीं प्राप्त होगा, इसलिए दो मत आए, एक तो अनंत और एक असंख्यात लोक प्रमाण। देखो इसलिए अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का जगने काल असंख्यात लोक प्रमाण है ऐसा स्वीकार करना चाहिए, और उत्तरोत्तर एक एक प्रदेश के अधिक के क्रम से सत्कर्म स्थानों में परिभ्रमण करने का कोई नियम नहीं है। यानी एक 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 ही प्रदेश बढ़ेगा ऐसा थोड़ी है, उसमें कोई भी वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि एक स्थान अनंत स्थानों को उल्लंघन करके भी परिभ्रमण पाया जाता है। अनंत स्थानों का उल्लंघन कैसा होगा, जितना योग था उससे
जगन से उत्कृष्ट
असंख्यात गुना यथा योग्य योग हुआ तो समय प्रबद्ध भी कितना बढ़ गया, तो उसमें अनंत परमाणु बढ़ गया एक साथ, तो अनंत स्थानों का उल्लंघन कर दिया उसने।
यहाँ पे एक योग से दूसरे योग पे जाते हैं तो भी अनंत परमाणु का ग्रहण होता है,
वही तो बात। योग में एक प्रक्षेप की वृद्धि होती है
तो भी अनंत,
तो अनंत परमाणु बढ़ते हैं वहां पर, तो अनंत स्थानों का उल्लंघन करता है, एक एक परमाणु के लिए एक एक स्थान। यह किन्हीं आचार्यों का व्याख्यानंतर है, व्याख्यानंतर नहीं व्याख्यानांतर, वक्खानंतरम व्याख्यानांतर भाषांतर करते हैं। सो इन दो उपदेशों में से एक उपदेश ही सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उपदेश परस्पर में विरोध को लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जानकर व्याख्यान करना चाहिए। है तो दोनों उपदेश दोनों ही आचार्यों के हैं, एक ही सत्य होगा, फिर भी दोनों को जानना चाहिए कैसे, यानी जज मत बन जाओ कैसे, जज मत बन जाओ। अथवा खवगम पड़ुच्च वासुपुदत्तम वासुपुदत्तम, अथवा क्षपक की अपेक्षा, किसकी बात चल रही है, अनुत्कृष्ट की बात है, क्षपक की अपेक्षा वर्ष पृथक्त्व प्रमाण काल है। क्योंकि जो जीव गुणित कर्मांशिक की विधि से आकर सातवीं पृथ्वी में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म को करके पुनः यथाशास्त्र एकेंद्रियों में और मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष काल के द्वारा संयम को ग्रहण कर मुक्ति को प्राप्त होता है, उसके अनुत्कृष्ट द्रव्य का वर्ष पृथक्त्व प्रमाण काल उपलब्ध होता है। कुछ वर्ष प्रमाण क्यों, गुणित कर्मांशिक वाला लिया था,
यहाँ पे एक की क्यों बताया,
वही बताती हूँ। गुणित कर्मांशिक में क्या बात हो रही थी, वो त्रस की पूरी स्थिति लेना था और त्रस स्थिति के अंत में उसको नरक में ले गए थे।
अच्छा, तो
परंतु नरक में से डायरेक्ट एकेंद्रीय में तो नहीं जा सकता,
त्रस में जाएगा पीछे
तो में। पहले भी हमने जो उसको मनुष्यों में उत्पन्न कराया था पंचेंद्रिय में से, वो नहीं करना, गुणित कर्मांशिक वाला वहाँ से निकलेगा पंचेंद्रिय में
जाएगा
और उसकी स्थिति पूरी हो जाएगी तो एकेंद्रिय में चला जाएगा, तो एकेंद्रियों के एक दो भाव करके फिर वापस लौट सकता है, तो इसलिए यथा योग्य एकेंद्रियों के और पंचेंद्रियों के भाव करके। फिर मनुष्यों में होगा और आठ वर्ष अधिक अंतर्मुख के काल द्वारा संयम को ग्रहण कर वो क्षपण करेगा। विशेषाद मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि गुणित कर्मांशिक विधि से आकर जो अंत में उत्कृष्ट आयु के साथ दूसरी बार सातवें नरक में उत्पन्न होता है उसके अंतिम समय में ही मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति देखी जाती है। इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के काल के विषय में दो उपदेश पाए जाते हैं। एक उपदेश के अनुसार वह अनंत काल प्रमाण बतलाया है। इसकी व्याख्या करते हुए व्याख्या ने स्पष्टीकरण, हिंदी में व्याख्या का अर्थ होता है पर स्पष्टीकरण, मराठी में व्याख्या का अर्थ होता है परिभाषा
सूत्र
डेफिनेशन
डेफिनेशन।
हिंदी में व्याख्या करना यानी स्पष्टीकरण करना। हम कभी कभी हिंदी में इसकी व्याख्या, वो व्याख्या नहीं कहते उसको, वो डेफिनेशन के लिए व्याख्या शब्द परिभाषा।
गुजराती में व्याख्या को डेफिनेशन बोलते,
डेफिनेशन को बोलते मराठी में भी। तो इसकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी ने जो लिखा है उसका भाव यह है कि नित्य निगोद जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अब तक न तो निगोद से निकले और न निकलेंगे उसको भी नित्य कहेंगे। इनकी अपेक्षा तो मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का काल अनादि अनंत है। हाँ, जो नित्य निगोद से निकल कर क्रम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का अंत कर देते हैं उनकी अपेक्षा अनादि शांत काल है। पर चूर्णी सूत्र में इन दोनों प्रकार के कालों का ग्रहण न कर इतर निगोद जीवों की अपेक्षा काल का विचार किया गया है। आशय यह है कि एक बार मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति करके जो क्रम से इतर निगोद में चले जाते हैं उनके वहां से निकलकर पुनः उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के प्राप्त करने में अनंत काल लगता है। इसलिए चूर्णी सूत्र में मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अनंत काल कहा है, यह एक उपदेश है। किंतु एक दूसरा उपदेश भी मिलता है। इसके अनुसार मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल अनंत प्रमाण न प्राप्त होकर असंख्यात लोक प्रमाण बन जाता है। उन आचार्यों के मत से इस उपदेश के कारण का निर्देश करते हुए वीरसेन आचार्य लिखते हैं, जीवों के कुल परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण ही उपलब्ध होते हैं और सब प्रदेश सत्कर्म स्थानों में जीव क्रम से ही प्राप्त होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अतः जघन्य काल असंख्यात लोक प्रमाण बनने में कोई बाधा नहीं आती। अनुत्कृष्ट के जघन्य काल के विषय में ये दो उपदेश है, यह कह सकना कठिन है इनमें से कौन उपदेश सच है, इसलिए यहाँ दोनों का संग्रह किया गया है। यह संभव है गुणित कर्मांशिक जीव सातवें नरक के अंतिम में अंत में उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके और वहाँ से निकलकर क्रम से मनुष्य होकर वर्ष पृथक्त्व काल के भीतर मोहनी का क्षपण कर दे। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का जघन्य काल वर्ष पृथक्त्व प्रमाण भी कहा है। वर्ष पृथक्त्व ने कुछ वर्ष, अभी यहाँ तीन और आठ का नियम नहीं लगाना है। जैसे हम पृथक्त्व पूर्व कोटि में कभी 47 भी लेते कभी 95 भी लेते हैं, तो यहाँ यथायोग्य समझना। जितना काल उसको नरक से निकलेगा पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा, वहां से निकलेगा एकेंद्रिय में चला जाएगा और वहां से निकलेगा और मनुष्य होगा और 8 साल में संयम धारण करेगा, वो सब वर्ष पृथक्त्व में आ जाएगा। अब यहीं तक हम रुकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवानी मस्तक नमो सदा।